ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवार उल हक। लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह आज भी गतिरोध बना रहा और विपक्ष के हंगामे के कारण केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बजट के अलावा अन्य किसी विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले अपनी बात रखने की अनुमति देने का वादा किया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता की बात पूरी तरह सही नहीं है और अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता से कहा था कि पहले वो ये विषय बताएं जो वो सदन में उठाना चाहते हैं। दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा। थरूर ने उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगी। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में कांग्रेस के कुछ सदस्य गए थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने वादा किया था कि उन्हें बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कहा कि उनके पास किसी तरह का नोटिस नहीं है और वर्तमान में स्थिति में केवल बजट पर बोलने की अनुमति दे सकती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में वो भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने पहल की थी कि अगर सभी पक्ष मान जाएं तो सदन चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जब बैठक में कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में कुछ बोलना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब वो विषय बताएंगे तब अनुमति दी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने स्पीकर की ओर से वादा किए जाने की बात कही थी वो पूरी तरह से सही नहीं है। रिजिजू ने यह भी कहा कि अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देंगे तो अन्य दलों के नेताओं को भी मौका देंगे और सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार की ओर से हमेशा तैयार हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करें जिससे सदन की गर्मा गिरे। हालांकि आसन से जब बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए फिर से थरूर का नाम पुकारा गया तो उन्होंने फिर से नेता प्रतिपक्ष को ही पहले बोलने देने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी को बजट से अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण बैठक कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सवेरे बैठक शुरू होने पर जब कांग्रेस के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति मांगी तो अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी किसी सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वो बजट पर सदन में होने वाली चर्चा में सभी सदस्यों को उनके लिए आवंटित समय के अनुसार बोलने का अवसर देंगे। इस दौरान कांग्रेस के सांसदों ने आसन के पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने 5 मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने बजट पर चर्चा करने के लिए पहले वक्ता के रूप में कांग्रेस सांसद थरूर का नाम पुकारा तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर की। हालांकि पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उनके पास फिलहाल जो विधायी कार्य का ब्यौरा है उसके मुताबिक बजट पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने का अधिकार है। आसन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चाहें तो बजट पर बोल सकते हैं। राहुल गांधी को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण गतिरोध बना रहा और कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार पर्यावरणीय अनुपालन और उत्सर्जन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के विस्तार के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीतियां वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक टिकाऊ मार्ग प्रदान करती हैं। उनका कहना था कि इनमें बिजली प्रणालियों का निम्न कार्बन विकास, निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, भवनों में ऊर्जा और सामग्री दक्षता तथा सतत शहरी नवाचारी निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली को प्रोत्साहन तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कदमों को शामिल किया गया है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात का उल्लेख किया कि भारत सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन राष्ट्रीय तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद तथा पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शेखावत ने बताया कि अब पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए टिकाऊ और उत्तरदायी गंतव्यों का विकास करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल के अनुसार देश में विश्वविद्यालय और मानद विश्वविद्यालय स्तर की 1395 संस्थान, 53,197 कॉलेज और 16,577 स्वतंत्र संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 में 3,42,00,000 से बढ़कर 2022-23 में 4,46,00,000 हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1,57,00,000 से बढ़कर 2,18,00,000 हो गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 2014-15 में 46,07,000 से बढ़कर 2022-23 में 69,13,000 हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन 2014-15 में 16,41,000 से बढ़कर 2022-23 में 28,72,000 हो गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में नामांकन 99,76,000 है। प्रधान ने बताया कि 2014 के बाद से अब तक 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें अन्य बातों के साथ रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है, ताकि बैंकों और फिनटेक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्री का कहना था कि पिछले 4 वर्ष में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान सरकार ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को लगभग 8,730 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक PIDF के माध्यम से पूरे देश में लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच प्वाइंट्स तैयार किए जा चुके हैं, ताकि निर्बाध डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके। और अब आकर्षिता सिंह से सुनिए राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी।
राज्यसभा में आज आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष ने जहां एक ओर सरकार पर बजट में मात्र खोखली घोषणा करने और रोजगार जैसी चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति दी है। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती की है कहा, और उन्होंने कहा कि 1,44,376 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में कमी की गई है, जिसमें केंद्र के पूंजीगत व्यय में 25,335 करोड़ रुपए तथा राज्यों के पूंजीगत व्यय में 1,19,041 करोड़ रुपए की कमी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि राज्यों को धन क्यों नहीं दिया गया या कोष जारी करने के समय शर्तें क्यों लगाई गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में वित्त मंत्री के बजट भाषण में कोई कारण नहीं दिए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है। उन्होंने कहा कि 20% से कम कामकाजी आबादी नियमित क्षेत्र में कार्यरत हैं। चिदम्बरम ने कहा कि 144 करोड़ लोगों की आबादी में से 2% से भी कम लोग कारखानों में कार्यरत हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अरुण सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो एक इतिहास है। उन्होंने कहा कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में बजट का कुल आकार 17 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, यानी बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। भाजपा सदस्य ने कहा कि बजट में कुल मिलाकर 12.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है, जो कांग्रेस नीत सरकार के समय 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में हुआ करता था। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष में लगभग 18 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करने जा रही है, जबकि 4.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार करने से देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। भाजपा सदस्य ने कहा कि 2014-15 में 4.7 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जाते थे, जिसकी संख्या पिछले साल 9.2 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कर संग्रह में बढ़ोतरी होना यह दिखाता है कि देशवासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों में भरोसा बढ़ गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे भारत को विकसित देश बनाने में मदद नहीं मिलेगी। तृणमूल सदस्य ने केंद्र सरकार की आगाह किया है कि वो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की आड़ में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण NRC लागू करने का जो प्रयास कर रही है, वो उस पर ही उल्टा पड़ेगा। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि पश्चिम बंगाल और असम से कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इसके आंकड़े सरकार को बताना चाहिए। द्रमुक के पी विल्सन ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि बजट में तमिलनाडु के लिए कोई भी नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि उनके राज्य के लिए कुछ भी किया जाता है तो उसका लाभ भारत को ही मिलेगा। विल्सन ने अपनी बात पूरी कर लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आसन की अनुमति से संक्षिप्त हस्तक्षेप करते हुए कहा कि द्रमुक सदस्य का यह दावा बिल्कुल गलत है कि बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया। सीतारामन ने कहा कि दुर्लभ खनिज गलियारा योजना, प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल, मछुआरों के लिए घोषित योजनाएं, नारियल से संबंधित घोषणाएं ऐसी हैं जिनसे तमिलनाडु के लोगों को ही नहीं, लड़कियों, किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का दावा करना उचित नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों को पूरी तरह उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने दावा किया कि हाल में घोषित भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने अमेरिका के आगे किसानों के हितों को गिरवी रख दिया। चर्चा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान, निरंजन बिशी, राष्ट्रीय जनता दल के KAD सिंह, अन्य द्रमुक के M थम्बी दुरै, M धनपाल, मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति, मनोनीत मीनाक्षी जैन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, माकपा के AA रहीम, जनता दल यू के संजय कुमार झा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, तमिल मनीला कांग्रेस MG के वासन, भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले आज सुबह बैठक शुरू होने पर DMK सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उन्होंने मौजूदा संसद सत्र के दौरान भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का विवरण सदन के बाहर देने को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवा का समर्थन किया। सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। इसके बाद शून्यकाल के तहत सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अब तक पर्याप्त संसाधन नहीं होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि यह संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहा है, क्योंकि इसकी आधारशिला कांग्रेस नेता और रायबरेली की तब की सांसद सोनिया गांधी ने रखी थी। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि आज देश के अन्य हिस्सों में भी एम्स काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली स्थित एम्स में मरीजों का दबाव कम नहीं हो पाया है। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, तब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहा, जिसे सभापति CP राधाकृष्णन ने अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।